नमस्कार आदाब। मजदूर वाणी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मजदूर वाणी एक प्रयास है, एक कोशिश है समाज में दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने की। दोस्तों, लोक रिवायत ही इस मुल्क की पहचान रही है। इस मुल्क के लाखों मजदूर आज भी अपनी पहचान इसी लोक शैली से जोड़ते हैं। मजदूरों की आवाज़ को, उनकी समस्या को उन्हीं की लोक शैली में दुनिया के सामने लाने की हमने एक कोशिश की है।
काली रात बंधुआ की खत्म होने आई रे, धरती को सोना बनाने वाले भाई रे, धरती को सोना बनाने वाले भाई रे।
आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश जी।
देखिए स्वामी जी, इतनी कड़े कानून के बावजूद जो आज एग्जिस्ट करना है, इसके बावजूद बंधुआ मुक्ति की समस्या जस की तस बनी हुई है।
मैंने बताया आपको कि कानून तो बना दिया, लेकिन कानून को पालन करने के लिए, लागू करने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, वो इच्छा शक्ति हमारे जो हुकूमत करने वाला तबका है, जो स्वाभाविक है ऊंची तबकों, ऊंचे जातियों का है, पैसे वाले खाते पीते लोग हैं, उनके अंदर वो संवेदना नहीं है। वो अपने कुत्ते के बच्चे को लेके गोद में प्यार कर सकते हैं, चूम सकते हैं, चाट सकते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे को गोद में लेकर के वो कभी भी प्यार नहीं कर पाते, करते हुए दिखाई पड़ते। तो मेरा कहना है कि संवेदना असली चीज़ है, यही मानवीयता है, इसी को मैं अध्यात्म कहता हूँ। यही यदि हम कोई ईश्वर मानते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है हमारे लिए कसौटी कि हम किस खुदा की इबादत कर रहे हैं। एक पत्थर बना करके मूर्ति उसकी कर रहे हैं, या जो हमारे दिलों में, हमारे मन के अंदर जो मंदिर है उसमें बैठा हुआ जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो प्रेम है, करुणा है, न्याय है, सत्य है, इस परमात्मा की यदि हम उपासना करें तो हमारा दिल किसी के ऊपर भी अन्याय होता हुआ देख करके और एकदम रो पड़ता है। और तब हम देखते हैं कि कानून में हमें अधिकार है, इतना बड़ा अधिकार है कि हम बड़े से बड़े आदमी को भी तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं, 3 महीने के लिए जेल में ठोंक सकते हैं समरी ट्रायल में, और ज़रूरत पड़े तो उसकी और अच्छी मुकदमेबाजी करके और उसको 3 साल तक के लिए उसको कठोर सज़ा दिला सकते हैं। यदि इतना अधिकार एक SDM के पास है, एक DM के पास है, इन अधिकारों के लोग प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि कोई भी देश में हिम्मत नहीं कर सकता, जरूरत नहीं कर सकता किसी को बंधुआ मजदूर रख सके।
देखिए स्वामी जी, तारीख में बंधुआ मजदूरी की एक लंबी दास्तान रही है। सदियों से गरीबी और भूख के कारण बंधुआ मजदूरी की प्रथा सामने आई है, लेकिन क्या आज भी इस प्रथा के पीछे गरीबी ही मुख्य वजह है?
बहुत बहुत ज़्यादा गरीबी मुख्य वजह है। जो लोग न्यूनतम मजदूरी से काम कर रहे हैं उससे नीचे क्यों कर रहे हैं, यदि उनको बता भी देते हैं हम कि देखो तुम्हारी न्यूनतम मजदूरी जैसे दिल्ली में इस समय 125 रुपये 80 पैसे है और लोग काम कर रहे हैं केवल 80 रुपये पे 90 रुपये पे, हम उनको जाके कहते हैं अरे तुम रोज़ के 40-45 रुपये अपने क्यों खो रहे हो, तुम क्यों नहीं संगठित होते, आवाज़ लगाते, लड़ते? तो कहते हैं जी हम लड़ेंगे तो ये भी छूट जाएगी, ये 80 रुपये भी नहीं मिलेंगे। तो इस डर के मारे वो बेचारे न्यूनतम मजदूरी से कम में काम कर रहे हैं, वो एक तरह की बंधुआ मजदूरी है। लेकिन हालात ऐसे हैं देश के और हिस्सों में जहाँ से लोग भाग भाग करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, वो ये सोचते हैं कि हमारे गांव की हालत तो और भी ख़राब है, वहाँ तो 30-40 रुपए भी मुश्किल से मिलते हैं, 5 पाव धान में आज भी बिहार और झारखंड में बहुत जगह पर काम कराया जा रहा है। तो ऐसे हालात को देख करके लोग सहमे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि भूख, गरीबी, लाचारी, बेबसी ये मूल कारण है जहाँ इंसान अपने स्वाभिमान को भी खो करके, अपने इंसान होने के उस पहचान को भी खो करके, छिपा करके, और फिर वो अपने आप को सरेंडर कर देता है केवल मात्र जिंदा रहने भर के लिए, चाहे वो जानवर की तरह ज़िंदगी क्यों ना हो।
दोस्तों हमारी ये चर्चा जारी रहेगी लेकिन इस ब्रेक के बाद।
स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन अयाची राजा जनक के गाम। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन अयाची राजा जनक के गाम। जय ठम उगना बनला महादेव विद्यापति के जानियो।
स्वर्ग सा सुंदर मिथिला,
रानी ता मोन लगैया अपने प्रेमक नगरी में। हमरा मीता मोन हो, हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेमक नगरी में। मिथिला का बोल अनमोल लगैया, मिठका बेर जेहन सबरी के। झुकी झुकी करे छी हम माए के प्रणाम, मांडन आया जी राजा जनक के गाँव।
स्वामी जी, सबसे मौलिक सवाल यह है कि आप बंधुआ मजदूर किसे कहेंगे? हम किस श्रेणी के मजदूर को बंधुआ मजदूर कह सकते हैं?
हम बंधुआ मजदूर उसे कहेंगे शुरू करने के लिए जिसको भारत में राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। न्यूनतम मजदूरी का न मिलना सुप्रीम कोर्ट ने भारत के 1976 के बंधुआ मुक्ति अधिनियम 1976 के कानून के अंतर्गत निश्चित किया है कि उस व्यक्ति के बारे में ये हम पहले मान के चलेंगे कि वो बंधुआ मजदूर है। और वो चाहे छोटी उम्र का है तो बाल बंधुआ मजदूर है, बड़ी उम्र का है तो वयस्क बंधुआ मजदूर है। ये तो पहचान बिल्कुल आसान है। न्यूनतम मजदूरी से कम में काम करने की जो मजबूरी है वो इंसान को बंधुआ मजदूर बना रही है।
स्वामी जी, क्या इसके पुनर्वास की कोई व्यवस्था है कि जब कभी आप किसी बंधुआ मुक्ति के अभियान में किसी मजदूर को अलग करते हैं, उससे बंधुआ मुक्ति दिलाते हैं मजदूरी से, तो क्या उसके पुनर्वास की कोई व्यवस्था है या सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है?
जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार ने 1976 में कानून बनाया, उस समय उन्होंने कहा कि जो बंधुआ मजदूर मुक्त होगा उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों आधा आधा पैसा मिला करके 4,000 रुपया प्रति बंधुआ मजदूर देंगी। उन दिनों 4,000 रुपया बहुत होता था, बाद में महंगाई होती गई तो 4 का 6,000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर 20,000, अभी 20,000 चल रहा है। हालांकि हम चाह रहे हैं कि इसको भी बदलवाया जाए, ये कम से कम 50,000 तक हो। तो एक एक मुक्त हुए बंधुआ मजदूर को, पुरुष को अलग और स्त्री को अलग, पति को अलग, पत्नी को अलग, और जो बच्चे भी काम कर रहे हैं तो उन बच्चों को भी एक एक गिन करके 20,000 रुपये का सामान मिलता है उनके पुनर्वास के लिए। सरकार देती है, यदि उनकी अपनी ज़मीन नहीं है तो ज़मीन खेती के लिए या मकान बनाने के लिए देती है। बहुत सस्ते ऋण पर उनको इंदिरा आवास योजना वगैरह में मकान बना के दिया जाता है। यदि कहीं पर सरकारी नौकरियों में जगह खाली हो तो उनको सरकारी नौकरियों में भी देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस तरह से पुनर्वास के बहुत लंबे चौड़े प्रोग्राम हैं भारत सरकार के भी और राज्य सरकारों के भी। इन योजनाओं को जो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने बनाई हैं, उनके लिए सरकार कहती है कि उसमें प्राथमिकता सबसे पहले जो मुक्त हुए हैं बंधुआ मजदूर उनको ये सब सुविधाएँ दो, फिर दूसरे गरीबों को ये सब सुविधाएँ दो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार ने कानून बनाए हैं, पुनर्वास की योजनाएँ बनाई हैं। अब ज़रूरत है देश भर में कोने कोने से, दूर दराज के इलाकों से वो स्वयंसेवी संगठन और कार्यकर्ता जो किसी न किसी भगत सिंह से प्रेरणा लेने वाले, किसी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की कुर्बानी से प्रेरणा लेने वाले, और सच्चे अध्यात्म में विश्वास करने वाले कि ईश्वर एक है और हम सब बराबर हैं उसकी संतान, और ऐसे लोग पूरे मानवीय संवेदना के साथ यदि खड़े हो जाए मुट्ठी भींच करके कि हम ये गुलामी की दास्तां और नहीं सुनेंगे, इसको मिटा करके रहेंगे, इसको ख़त्म करके रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-4-10 सालों में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है।
स्वामी जी, मेरा आखिरी सवाल कि अगर कोई बंधुआ मजदूर अपनी मुक्ति चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए और किससे मिलना चाहिए?
सीधे तो मैं ये कहूँगा कि उसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा के साथियों से संपर्क करना चाहिए जो कई प्रांतों में हैं, और नहीं मिलते उस प्रांत में तो उसको हमसे सीधे दिल्ली में संपर्क करना चाहिए, और उनकी सुविधा के लिए हम अपना पता दे देते हैं आपके माध्यम से।
मैं रुकना चाहूँगा, लेकिन कोई सरकारी कार्यालय जो वहाँ पे है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या ब्लॉक लेवल,
ये भी ठीक है,
वहाँ किन से, किस सक्षम अधिकारी से वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ उन्हें अपनी परेशानी बता सकते हैं या एप्लीकेशन वहाँ पे अपना आवेदन दे सकते हैं?
यदि कोई भी व्यक्ति उनका सहयोगी मिल जाए, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो उनकी मदद करना चाहता है, तो वो अपनी दरखास्त एप्लीकेशन बना करके जो अपने सब डिवीज़न का जो SDM है उसके पास वो दे दें, या जिलाधिकारी है वहाँ पर जा कर के दे दें। तो कोई भी इन मजदूरों से, इन गरीबों से हमदर्दी रखने वाला व्यक्ति अपनी तरफ से इनकी कहानी लिख करके नीचे इनका अंगूठा लगवा करके, या दस्तखत कर सकते हैं तो वो भी लगवा करके, और फिर उसको दे दें कि ये मैं बंधुआ मजदूर हूँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी बीत रही है, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, पर मुझे मुक्त कराया जाए और बंधुआ मजदूर जो कानून बना हुआ है इसकी मुक्ति का वो लागू किया जाए।
स्वामी जी, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई समस्या हो और आप मजदूरों के बारे में कानूनी राय जानना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें, हम आपकी समस्या को सक्षम अधिकारियों के समक्ष रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पता है मजदूर वाणी, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 7 जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली 11001। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए विदा चाहूँगा। नमस्कार, खुदा हाफिज़।